ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उन्नति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ दीपक पारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उन्नति, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक पारिक जी, जो कि कृषि अर्थशास्त्री और उद्यमी हैं। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित जी।
दीपक जी, हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में आ चुका है और कुछ न कुछ उसकी वजह से जो हम कहते हैं विकास है, उन्नति है, वो हो रही है, और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी ज्यादा आबादी कृषि या उससे जुड़ी हुई चीजों में ही से ही अपनी आजीविका अर्जित करती है। ऐसे में आप क्या हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में किस तरह के सुधार लाए जा सकते हैं?
अमरीश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत के काफी लोग कृषि के ऊपर निर्भर हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, लेकिन आप और मैं भी, आप सोचिए हम सुबह उठते हैं, हमारी पहली चाय से रात का आखिरी दूध तक, हम हर आदमी जो इस दुनिया में है वो कृषि से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसलिए सिर्फ ये ऐसा ही नहीं है कि जो किसान और जो खेती में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कृषि का ज्यादा एफिशिएंट होना जरूरी है, बट हम सब लोगों के लिए जो हम उपभोक्ता हैं खाद्य पदार्थ के, उन सबके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कृषि उन्नत हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपने बताया कि काफी सेक्टर के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है और एग्रीकल्चर में भी कर रहा है। तो एग्रीकल्चर में कुछ अच्छे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहां पे इम्पैक्ट कर रहा है, वो पहला था प्रोडक्टिविटी के अंदर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम किसान को कब कहाँ कैसे खेती करनी है उसके लिए एक मूलभूत जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दी जा सकती है। हम सैटेलाइट के जरिए उसका खेत की आज की तारीख के अंदर उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी फसल का स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसको बता सकते हैं कि उसके खेत के किस हिस्से के अंदर क्या पानी की कमी है, उर्वरक की कमी है, या किसी उसके खेत के हिस्से में किसी कीट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है।
एक चीज मैं जानना चाहूंगा दीपक जी आपसे कि किसान इस बात को कैसे जान पाएगा, मतलब कौन सी ऐसी प्रणाली हमने विकसित की है कि हर किसान तक ये जानकारी पहुंच पाए?
इसके लिए आपने देखिए हमारे मोदी जी ने घर घर तक मोबाइल फोन पहुंचा दिया है जिसको वो जैम बोलते हैं। तो आज हमने देखा है कि हिंदुस्तान के उन कुछ देशों में है जहाँ पे मोबाइल फोन का जो पेनिट्रेशन है वो एक गांव गांव तक पहुंच गया है। मैं काफी किसानों के साथ पूरी दुनिया भर में काम करता हूं और मैंने हिंदुस्तान में खासकर देखा है कि कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो एक घर में कम से कम एक मोबाइल फोन तो होगा। किसान खुद अगर एक स्मार्टफोन नहीं रख रहा है उसके बेटा या बेटी के पास वो स्मार्टफोन होगा। तो उसके कारण क्या है कि ये मोबाइल फोन एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप अच्छी से अच्छी जो इन्फॉर्मेशन किसान तक पहुंचानी होती है वो पहुंचाई जा सकती है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों की काफी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक उपज करके एक एब्सोल्यूट करके कंपनी है, उनकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें किसान का खेत वो देख पाता है, उंगली लगा के अपने खेत की बाउंड्रीज में डाल देता है, उसके बाद उसको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि उसके खेत के अंदर क्या हो रहा है, उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है खराब हो रहा है, अगर कुछ समस्या आ रही है तो समस्या क्या हो सकती है, कब उसको पानी देने की जरूरत है, कब उसको उर्वरक देने की जरूरत है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, एक SMS के थ्रू एक फार्मर तक, किसान तक पहुंच जाती है और वो जब ये सारी एक्टिविटी करता है तो उसका जो आउटकम है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रहा है किसानों का, और दूसरा सबसे अच्छी जो मदद है किसानों की कि अगर कोई कीट लग जाता है गलती से तो एक मोबाइल फोन के फोटो से वो कौन सा कीट है, उसे पत्ते की एक फोटो ली या अगर कीट दिख रहा है तो कीट की फोटो ली, और उसके जरिए जब वो उस एप्लीकेशन अपलोड करता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये कौन सा कीट है जिसने मेरे फसल के ऊपर नुकसान पहुंचाया है और मुझे आगे क्या करना है कि जिससे बाकी बची हुई फसल पे इसका नुकसान कम हो सके। और तीसरी चीज है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसान को एक एडवाइस दी जा सकती है कि उसको अपना जो भी उसने उपज उगाया है उसको कब मार्केट में बेचना है, कब उसको सही प्राइस मिल सकती है, और हम हिस्टोरिकल जो डेटा होता है पिछले कई सालों में जो भाव रहे हैं कब वो ऊपर रहे कब नीचे रहे उनपे किस फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फसल के कब भाव अच्छे होंगे कब कमजोर रहेंगे और किसान को कब अपना माल मंडी में या मार्केट प्लेस के जरिए देखना चाहिए।
दीपक जी, इससे जुड़ी हुई एक चीज और, जैसा आपने कहा ना कि कीटनाशक के कीट के बारे में बताया, कि कीट लगा तो फिर वो उसकी पहचान हो सकती है और उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है, ये सलाह किसानों को दी जा सकती है। लेकिन क्या प्रिवेंटिव तौर पे हम पहले से बता सकते हैं कि अगर ये खास फसल है इसमें इस तरह के कीट लगने की संभावना है तो किसान पहले से सचेत रहे? इसी तरह से जो भी फसल किसान उगा रहा है उसमें किस तरह के जो खाद की जरूरत है, उर्वरक की जरूरत है, वो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बता सकते हैं किसानों को?
जी बिल्कुल। तो पहले हम बात करते हैं आपने जो बोला कीट की।
जी,
कीट का आज क्या है कि जैसे आप और मैं एक है ना टेम्परेचर, एक मॉइस्चर, एक ह्यूमिडिटी, उसके हिसाब से हम अपने आप को कम्फर्टेबल समझते हैं। आप भी जब रूम में बैठते होंगे, अगर गर्मी ज्यादा होगी तो आप एसी 23 के ऊपर ला के बैठ जाते हैं कि आपको वो एनवायरमेंट ठीक लगता है। कीट भी उसी की तरीके से हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक टेम्परेचर, मॉइस्चर, टाइप ऑफ क्रॉप, अगर ये सारे फैक्टर मिलते हैं तब उनका बढ़ना ज्यादा होता है। तो हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो एक टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके जरिए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी कीट लगने के चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्या 30% चांसेस है कि अभी के माहौल के अंदर ये कीट लग सकता है, 40% है, 50% है, उसके हिसाब से एक किसान या एग्रोनॉमिस्ट ये डिसाइड कर सकता है कि क्या उसको प्रिवेंटिव स्प्रेइंग करना है कि नहीं करना। तो अगर चांसेस हैं कि 70% चांसेस हैं कि पिंक बॉल वॉर्म लगने वाला है आपके कॉटन की फसल के अंदर, तो प्रिवेंटिव स्प्रेइंग करके ये एंश्योर कर सकते हैं कि वो इम्पैक्ट नहीं आए। या फॉर एग्जाम्पल अगर जो स्टेम बोरर तरह का जो कीट होता है वो लगा है कि नहीं लगा है, या लग सकता है कि नहीं लग सकता है, ये हम पहले से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसके हिसाब से किसान को बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे इस कीट के लगने के चांसेस कुछ ज्यादा है, तो आप एक प्रिवेंटिव स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड या बायोलॉजिकल कीजिए। तो इस तरीके से हम है ना कीट की समस्या जो है उसको पहले से किसान को अपडेट कर सकते हैं, पहले से उसको एक चेतावनी दे सकते हैं कि आपके खेत में समस्या आ सकती है तो आप तैयार रहिए। अब जहां तक बात है कि आपने जो बताया उर्वरक की, तो इसके अंदर भी जो सॉइल टेस्टिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई भी किसान खेती करता है उससे पहले अगर उसने एक बार सॉइल टेस्ट कराई, और आजकल तो पुराने जमाने में था कि हमको है ना केमिकल एनालिसिस करना पड़ता था, उसमें काफी दिन लग जाते थे, तो किसान भी थोड़ा उत्साहित रहता था कि सैंपल इकट्ठा करूंगा, केवी के लेके जाऊंगा, फिर मेरे को 13 या 15 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। उसकी जगह आज इन सॉइल जैसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको 15 मिनट के अंदर करीब करीब 11-12 जो पैरामीटर्स होते हैं आपकी मिट्टी के, वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। उसके हिसाब से आप जैसे ही उसको बताते हैं कि मुझको धान उगाना है या गेहूं उगाना है या मुझे मक्का उगाना है या मुझे तुअर उगानी है, उसके हिसाब से वो बता देता है कि आपको कितना किलो यूरिया डालना है, कितना किलो डीएपी डालना है, कितना किलो पोटाश डालना है, और या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है अगर बोरोन सल्फर उसकी कमी है तो कितना डालना है और कब डालना है। उससे किसान को उर्वरक की जो कमी रहती है उसकी जमीन के अंदर या उसकी मिट्टी के अंदर, वो पहले से जान के उसका जो भी सोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है।
जी दीपक जी, एक उपलब्धता की बात भी आती है कि अगर पता भी लग गया किसान को कि ये कीटनाशक चाहिए या ये उर्वरक चाहिए जो भी, और या जो भी इनपुट चाहिए, तो वो उपलब्धता उसको कहाँ से कैसे सुनिश्चित होगी, इसमें भी किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी मदद करती है?
नहीं, ये आप टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे आज भारत सरकार इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी राइट भारत यूरिया इस तरीके से सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो जितने भी लोग उर्वरक बेच रहे थे वो सब अब एक ब्रांड के अंदर बेचते हैं, तो सारा का सारा डेटा कंसोलिडेट होता है गवर्नमेंट के पास। अब सरकार के पास जब ये डेटा आता है तो उसको मालूम है कि कहाँ पे कितनी डिमांड रहने वाली है। पहले जमाने में क्या होता था कि कहीं पे यूरिया के बैग पड़े हैं, कोई खरीद नहीं रहा है, और दूसरी जगह यूरिया के बैग की जरूरत है और वहां पे किल्लत है और कालाबाजारी हो रही है। अब ये सरकार ने ऐसा तंत्र बना दिया है कि सारी इन्फॉर्मेशन जब सरकार के पास आती है, ये डेटा पूरा सरकार के पास आता है, सरकार के पास यही के फिगर आते हैं कि कहां पे कौन सी फसल उगाई जा रही है, कितनी फसल उगाई जा रही है, उससे वो ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे किस तालुके के अंदर कितने उर्वरक की जरूरत पड़ेगी और सरकार उसको मुहैया करा पाता है। तो ये आप देखेंगे जो सरकार के कंट्रोल में जितने भी फर्टिलाइजर हैं उन सब में तो ये काफी अच्छा काम कर रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे वो है ना डिमांड असेसमेंट के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी कहां जरूरत ज्यादा कब रहने वाली है, उसके हिसाब से उसका इन्वेंट्री या उसका उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सरकार ने है ना उर्वरक में तो ये बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने डेटा का यूज करके कहाँ पे किस उर्वरक की जरूरत है वो वहाँ पहुँचा देते हैं और कालाबाजारी से काफी कम हुई है।
हम सभी जानते हैं खेती एक ऐसा काम है जो सारी चीजें एक तरफ और मौसम एक तरफ, किस समय मौसम क्या करवट ले और किसान की खड़ी हुई फसल नष्ट हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बारिश आ जाए, या कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, इनसे हम एआई की मदद से किसानों को कैसे बचा सकते?
देखिए अभी ये नेचर का जो इतना बड़ा ताकत है इसके अंदर बाकी सारी समस्याओं के लिए एआई कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे आपने देखा एकदम से ओले आ जाना, अब ये चीज 3 से 4 दिन के अंदर या 7 दिन में डेवलप होती है। जो शॉर्ट टर्म वेदर फिनोमिना जो अपन बोलते हैं उसके लिए एआई भी आपको अगर 7 दिन पहले ही बता देगी ओले पड़ने वाले हैं तो आप क्या कर लेंगे, या एआई आपको बता देगी कि लाइक यू नो इस जगह पे भारी वर्षा होने वाली है अगले 7 दिन में, किसान ने तो अपनी बुआई कर दी है, अब उसके पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज है कि वो भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि मेरे क्षेत्र में कम नुकसान हो। इसमें तो एआई ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर हम लॉन्ग टर्म अगर देखें कि अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके, और दूसरा आपको हमने सुना होगा क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, सडनली हम अगर हम देख रहे हैं हमारा जो हरियाणा से लेके ईस्टर्न यूपी तक का जो पूरा का पूरा पट्टा है जहाँ पे हम बोलते हैं कि गेहूं धान का बहुत प्रोडक्शन होता है, वहां पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि लाइक यू नो हीट स्ट्रेस और अनइवन मानसून के कारण प्रोडक्टिविटी काफी कम रही है लास्ट 2 साल के अंदर। सो अब तीसरे साल के लिए हम फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट टॉलरेंट फसलों को वहां पे प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे हमें पता है क्लाइमेट टॉलरेंट फसलों के अंदर यील्ड या उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन कम से कम अगर वेदर के एक्सट्रीमिटीज जो होती है उसको वो फेस कर पाती है। सो इस तरह के अगर हम स्टेप्स लेके थोड़ा किसानों को राहत दे सकते हैं, लेकिन नेचर के सामने प्रकृति के सामने हम बहुत छोटे बोले हैं।
दीपक जी, अगर हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करें, सतत रूप से जो भी खेती है उसकी बात करें, यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो एआई है हमारी किस तरह से मदद करती है?
देखिए एआई का सबसे अच्छा जो उपयोग है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर वो ये है कि वो आपको बताता है कि आपको कितना उर्वरक चाहिए, कब चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए, कब चाहिए, उससे क्या है कि इन रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। आज हम अगर खेती की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो विक्टिम और कल्प्रिट दोनों है क्लाइमेट चेंज का। 30% ग्रीन हाउस गैसेज है वो खेती के कारण होती है, और सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी खेती के ऊपर आता है। इसी तरीके से 70% अगर आप देखेंगे जो फ्रेश वाटर है दुनिया का वो खेती में उपयोग होता है, लेकिन उसके कारण क्या काफी अब्यूज होता है। हम सुन रहे हैं पंजाब के अंदर, आपको पता ही होगा कि हमारी वाटर टेबल बहुत नीचे हो गई है क्योंकि हमने पानी का बहुत ज्यादा अब्यूज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंश्योर करेगा कि आपको इतना ही पानी जितना कि आपकी फसलों को चाहिए उसकी सही मात्रा मालूम हो, फिर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर से अगर आप ये आईओटी टूल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो तभी पानी देंगे जब पानी की जरूरत हो। इन सब टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उर्वरक और पानी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम उपयोग मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारे पूरे के पूरे अर्थ को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का गिफ्ट दिया जा सके।
इस क्षेत्र में सागू बागू जो पायलट प्रोजेक्ट था तेलंगाना में उसकी काफी चर्चा होती है, तो ये प्रोजेक्ट क्या था और इसकी क्या उपलब्धियां हुई?
जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एआई फॉर एआई करके एक प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर लेके आए थे जो विश्व भर में चला रहे थे और हिंदुस्तान के अंदर भी उन्होंने उसका शुरुआत की थी। एआई फॉर एआई का मतलब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्नत खेती के अंदर किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि पूरे के पूरे एशिया के अंदर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो टेक्नोलॉजी पायनियर का अवार्ड दिया था वो मैं था 2018। मैंने बड़ा करीब ही काम किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जब एआई फॉर एआई के जो शुरुआती चरण के अंदर जो डिस्कशन होते उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। अब ये सागू बागू जो स्कीम है उसके अंदर ये है कि अलग अलग तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजी जो अलग अलग प्लेयर्स जिन्होंने डेवलप की थी उनको साथ में लाके एक खेती के अंदर उसको सस्टेनेबल बनाना, उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना और ये इंश्योर करना कि किसान का माल मार्केट तक पहुंच पाए, इसके लिए उन्होंने जो जो मुश्किलें थी उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उन मुश्किलों को टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया और ये पूरे पायलट को एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर उसको रेप्लिकेट किया जा सके। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि क्या हम ये जो बड़ी बड़ी समस्या है उनको छोटी छोटी समस्याओं के रूप में डिफाइन करके उनका टेक्नोलॉजी से जो भी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और आईओटी के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सके और फिर उसको स्केल करें।
जी जी दीपक जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने हमारे श्रोताओं को और खास तौर से जो लोग कृषि से जुड़े हुए लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको सचमुच ही बहुमूल्य जानकारी दी, और हमारे ये जानने के बावजूद कि टेक्नोलॉजी बहुत उपयोगी है हमें ये जरूरी है जानना कृषि क्षेत्र में खास तौर पे कि हम एआई के टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट आधारित जो भी सुविधाएं हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े, और मार्केटिंग के लिहाज से भी कैसे हम अपने जो भी कृषि के उत्पाद हैं उनको बेहतर ढंग से मार्केट कर सकते हैं। इस बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उन्नति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ दीपक पारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।